बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। अप टिल नाउ वी हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर वो कैसे होगा वो सब हमने देखा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाना था उसकी हमने बात की। अब क्वेश्चन ये रेज होता है दैट वंस अ कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कंपनी के पास आ गया, अब क्या कंपनी इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर देगी या कोई मजीद रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो उसको अब हम पहले देखते हैं। एज फॉर एज द प्राइवेट कंपनीज आर कंसर्न, दे कैन इमीडिएटली स्टार्ट देयर बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, प्राइवेट कंपनी, नाउ इट कैन बोरो मनी, इट कैन एंटर इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इमीजिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नो फर्दर फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड द पब्लिक कंपनी दे हैव टू फुलफिल सर्टन रिक्वायरमेंट्स बिफोर दीज कंपनीज कैन स्टार्ट देयर बिजनेस एक्टिविटीज। सो सबसे पहले पब्लिक, हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी के लिए कोई फर्दर फॉर्मेलिटी नहीं है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी, इट कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो भी एक्वायर करना होगा। जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी एक्वायर करना होगा रजिस्ट्रार से, ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकें। सो दिस इज गिवन इन सेक्शन नंबर 19 एंड सेक्शन 20। सो सेक्शन 19 है, उसका टाइटल है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय अ पब्लिक कंपनी। सो इट इज सिंपली एप्लीकेबल ओनली टू द कंपनीज विच आर पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज की अब हम बात नहीं कर रहे। सो पब्लिक कंपनी इफ इट वॉन्ट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशन, इट वॉन्ट टू बोरो मनीज, इट वॉन्ट टू इंटर इन टू बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सर्टन जो फॉर्मेलिटीज हैं, सर्टन जो रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर सेक्शन नंबर 19, उनको फुलफिल किया जाए। अब वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। सेक्शन 19, उसके अंदर जो पहली चीज कही गई है जो फुलफिलमेंट जरूरी है वो ये है कि जो शेयर्स इशू किए जाने हैं, जो शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए जाने हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो अलॉट किए जाएं। अच्छा, ये अब कहा गया है यहां पर सेक्शन 19 के अंदर दैट दिस अलॉटमेंट शैल नॉट बी लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में शायद पहले भी हमने बात की थी कि वो एक लिमिट है जिसको ले डाउन किया जा सकता है कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर, कि एटलीस्ट इतनी अमाउंट के शेयर्स अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं कि हमें इतने अमाउंट के शेयर्स चाहिए, तो उसके बाद ही शेयर्स की अलॉटमेंट जो है वो पॉसिबल है। सो ऐसा नहीं है कि एक बंदा है जी वो कहे जी हमें एक शेयर चाहिए तो आप एक शेयर दें और कहें जी ठीक है हमने शेयर्स दे दिए तो अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है। सो देर इज़ अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट एटलीस्ट इस हद तक अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब किए गए हों, तब शेयर्स की अलॉटमेंट जो है वो की जाएगी। ये माइक्रोफोन्स जो है ना, ये अपने कह रहे हैं बीच में डिस्टॉर्शन आ रही है। हेलो, ये जिनका माइक्रोफोन ऑन है वो अपने इसको म्यूट कर दें, म्यूट माइक्रोफोन के ऑप्शन पे क्लिक करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था ये डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको माइक्रोफोन्स बंद कर दें प्लीज। सो मैं ये कह रहा था कि मिनिमम स्क्रिप्ट, हाँ जी जी मैं कर रहा हूँ मैं उसी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पर ही बात कर रहा हूँ। ओके, मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको ये बता रहा था कि ये एक लिमिट है कि कम से कम इतनी अमाउंट के शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे। अब कैसे है, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि एक है जिसको हम कहते हैं नॉमिनल कैपिटल, जो मैक्सिमम लिमिट है जिस हद तक कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है। साथ ही साथ एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि कम से कम इस हद तक अमाउंट के शेयर्स अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। लेट से एक कंपनी है, उसका जो शेयर कैपिटल है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो है 10 लाख रुपए। अब उस कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा कि 7 लाख जो है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि हम लोगों को ऑफर करेंगे, पब्लिक को ऑफर करेंगे कि हमारे शेयर्स जो हैं वो आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको शेयर्स अलॉट कर सकें। तो लोग पब्लिक जो है एटलीस्ट अगर 7 लाख रुपए के शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब करती है तो फिर ही शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। सो ये एक मिनिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा कि अगर लोग करते हैं दैट विल बी समथिंग एल्स, लेकिन एटलीस्ट इस हद तक अगर शेयर्स सब्सक्राइब किए जाएंगे तभी शेयर्स अलॉट हो। तो सेक्शन 19 ये कह रहा है कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अचीव करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर जिन लोगों ने शेयर्स सब्सक्राइब किए थे उन लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं। पहली रिक्वायरमेंट ये है। अब इसी तरीके से अगर कुछ लोग ऐसे थे जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, यानी जो एप्लीकेंट्स थे, ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सब के सब शेयर्स ही इशू कर दिए जाएं। इट इज़ नॉट ओनली नॉट ऑल्सो कंपल्सरी, ये भी पॉसिबल है कंपनी को शेयर्स ना इशू करे कुछ लोगों को, एप्लीकेंट्स को छोड़ दे। सो अगर कोई ऐसे एप्लीकेंट्स हैं तो उनको रिफंड जो है वो किया जा चुका हो, कोई ऐसी अमाउंट ना हो जो कि स्टिल अनपेड हो, जो रिपे करनी हो उनको एप्लीकेंट्स को, तो ऐसी अमाउंट भी नहीं होनी चाहिए। सो पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई कि शेयर्स जो अलॉट किए जाने हैं वो अलॉट हो चुके हों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो भी अचीव की जा चुकी हो। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 19 वो ये है दैट द डायरेक्टर्स मस्ट हैव पेड फॉर देयर शेयर्स। जो डायरेक्टर्स हैं आप जानते हैं दैट दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, सो दे मस्ट ऑल्सो हैव पेड द फुल अमाउंट ऑन द शेयर्स विच इज टेकन बाय देम, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो शेयर्स लिए हैं उनके लिए भी फुली पे कर चुके हों। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया हो, क्योंकि पब्लिक को इनवाइट करना होता है तो उसके लिए कंपनी के पब्लिक कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो प्रॉस्पेक्टस इशू करें, और इन सर्टेन केसेस कंपनीज प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती, लॉन को जो है वो ये जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है या ऑप्शन देता है कि वो प्रॉस्पेक्टस इशू ना करें बल्कि स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करें। सो इन इधर केस कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया हो। ये कब होता है, प्रॉस्पेक्टस कब इशू करना है, स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कब इशू होगा, ये हम लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन जो भी उनके लिए एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है वो इशू कर चुके हों। और फिर जब ये चीज़ें हो चुकी तो उसके बाद कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से या कंपनी की किसी डायरेक्टर की तरफ से एक डिक्लेरेशन दी जाए कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हमने अभी जिक्र की हैं ये तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो उसके बाद ये डिक्लेरेशन जो है ये भी रजिस्ट्रार को सेंड कर दी जाए। सो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लॉ के लॉ अंडर सेक्शन 19 दीज रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड। अब जब ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी तो अब क्या होगा, ये डिक्लेरेशन जो है अभी हमने कहा कि ये रजिस्ट्रार को सेंड की जाएगी कि तमाम रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल कर ली। रजिस्ट्रार जो है ही मस्ट टेक द नोटिस ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स एंड इफ ही फाइंड्स आउट दैट ऑल ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड, जो हमने भी रिक्वायरमेंट्स बताई वो सब कंप्लीटेड हैं, तो अब उस इस कंप्लीशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स पर रजिस्ट्रार जो है आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी इंक्वायरीज, जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो तो कर ली उसने ये फाइंड आउट किया कि वाकई ये सब कुछ फुलफिल्ड है, सो ही शैल रजिस्टर दिस फैक्ट विद हिम। सो जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ये नेसेसरी फैक्ट्स हैं, इन सब को वो रजिस्टर कर लेगा अपने पास एंड ही शैल इशू द द सर्टिफिकेट विद द इफेक्ट दैट ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड. सो अब हमने क्या कहा, अब तक हमने क्या कहा कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी को कुछ मजीद भी स्टेप्स लेने हैं ताकि उसका उसको जो है वो अलाउ किया जा सके, ताकि वो लीगली कैपेबल हो कि वो अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टार्ट कर सके. सो ये हमने चंद एक रिक्वायरमेंट्स बताई, इनको फुलफिल करना ज़रूरी है और उस फुलफिलमेंट के बाद रजिस्ट्रार जो है वो चेक करेगा कि क्या एवरी थिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ और नॉट, और अगर वो सेटिस्फाइड हो तो उस सूरत में ही शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ, अब कौन सा सर्टिफिकेट इशू रहे, इट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सो जब ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया गया, तमाम जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो चुके हैं, नाउ दिस इज़ अ कंक्लूसिव सर्टिफिकेट कि लॉ ने लॉ के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ऑल ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड नाउ दिस पब्लिक कंपनी इज ऑथराइज्ड टू स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, अपने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको स्टार्ट कर सकती है, जो भी उसकी उसने नेसेसरी पावर्स यूज़ करनी है, बोरोइंग पावर्स यूज़ करनी है, किसी तरीके से मनी रेज करनी है, वो सब रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सब जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अब कंपनी कैरी ऑन कर सकती है. अच्छा, अब अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसने अभी तक जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तो अक्वायर नहीं किया लेकिन वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, अब इस दौरान जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब कुछ किस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय अ पब्लिक कंपनी. सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी प्रोविजनल. सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर कंपनी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कि उसकी इनकॉर्पोरेशन के बाद है लेकिन उसकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने से पहले, सो एनी सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्रोविजनल. प्रोविजनल का क्या मतलब है, दैट इट विल बिकम बाइंडिंग अपॉन द कंपनी हैज एक्वायर्ड द परमिशन टू कमेंस इट्स बिजनेस एक्टिविटीज. मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो पोस्टपोन की जाएगी टिल द टाइम दैट द कंपनी कैन एक्वायर इट्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. सो तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोविजनल ही कंसिडर किया जाएगा. अच्छा, अब सेक्शन 20 क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपनी जो है इन प्रोविजंस की यानी कमेंसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट इनको फुलफिल नहीं करती, तो सूरत में कंपनी के तमाम ऑफिसर्स हु आर लाइबल फॉर दिस डिफॉल्ट, who are responsible for this contravention of law, they shall be bound to face the penalties which will be of the level 2 on the standard scale. So ye section number 19 aur section 20 ke hawale se humne baat ki ki business commencement jab honi hai businesses ki to us surat mein kaun si wo legal requirements hain jinko fulfill karna zaruri hai. Ab hum baat karenge, ये किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं. हाँ जी, ठीक है, मैं बोलता हूँ. सेक्शन 20 के हवाले से हमने दो बातें की हैं. एक तो हमने ये कहा कि पेनल्टी जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है कि लॉ ने जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बयान की हैं उसके बगैर ही कोई पब्लिक कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर लेती है, तो उस सूरत में कंपनी के तमाम ऑफिसर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिफॉल्ट के लिए, इस कंटरवेंशन के लिए, तो दे विल बी फेसिंग द पेनल्टी अप टू द लेवल 2 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल. एक तो हमने ये पेनल्टी बयान की और दूसरी बात हमने ये की कि सेक्शन 20 ये कह रहा है कि कंपनी विच इज़ अ पब्लिक कंपनी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कि उसकी इनकॉर्पोरेशन के तो बाद है लेकिन अभी तक उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल नहीं किया, इट मीन्स कि उनको अभी तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो एक्वायर नहीं हुआ, तो अब इस दौरान कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोविजनल होगा. बाइंडिंग कब होगा, इन्फोर्सेबल कब होगा, जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो मिल जाते हैं तब तक उसको प्रोविजनल ही कंसिडर किया जाएगा. नाउ अनदर स्मॉल टॉपिक विच इज द कन्वर्जन ऑफ कंपनीज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी कंपनी के हमने डिफरेंट क्लासेस बयान की थी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसी तरीके से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय ग्रांटिंग, अनलिमिटेड कंपनी, डिफरेंट क्लासेस हमने बयान की थी. सो एक क्लास से दूसरी क्लास में अगर कंपनीज ने कन्वर्ट होना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये हम सेक्शन नंबर 46 से ऑनवर्ड जो है इसको हम देखेंगे. यानी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कंपनी को कन्वर्ट करना है, प्राइवेट से पब्लिक में करना है, सिंपल प्राइवेट कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी में आपने करना है, सिंगल मेंबर कंपनी को आपने प्राइवेट कंपनी में करना है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर्स में करना है, सो ऑन. मतलब किसी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर बदलना है तो वो कैसे होगा, उसको हम अभी मैंने जिस तरह कहा कि सेक्शन नंबर 46 से ऑनवर्ड्स सेक्शन हैं वहाँ पर हम इसको अभी देखने लगे. आपको बताया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 49 के अंदर प्राइवेट कंपनी के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसके आर्टिकल्स के अंदर तीन किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उस पर इम्पोज की जाती हैं. याद होगा सबको कि क्या था, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इट शैल नॉट बी मोर देन 50, और फिर हमने क्या कहा था तीसरी बात कि जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकते. सॉरी, जो तीसरी बात थी वो हमने बात की थी कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स हैं वो पब्लिक को ऑफर नहीं करेगी, इस चीज पर भी रिस्ट्रिक्शन होगी. तो ये तीन रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनीज के हवाले से हमने बयान की थी. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 49 प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 49, इसको हम पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं. अच्छा, अब अगर एक पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रही है, सबसे पहले इस पर हम देखते हैं क्या होगा. सेक्शन 46 पर आते हैं. सेक्शन 46 जो है वो कह रहा है कि पब्लिक कंपनी अगर अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो इसको क्या करना होगा. इसको एक तो कमीशन की जो है वो रिटर्न अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी. सो पब्लिक कंपनी खुद को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शैल रिक्वायर द परमिशन ऑफ द कमीशन, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की उसको प्रायर अप्रूवल वो रिक्वायर्ड होगी कि हम अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, बिजनेस जो हमारी एंटिटी है, कंपनी है, उसको प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सो इसकी इजाजत दी जाए. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. अच्छा, फिर ये अप्रूवल मिल जाती है तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी इस कन्वर्जन ऑफ स्टेटस के लिए, अपने स्टेटस को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट. कंपनी जो है वो अपनी जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से करेगी क्या, अब वो बात मैंने आपको क्या कहा था, कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर ये तीन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है. अगर किसी कंपनी पर ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी होगी सिंपली. सो अब अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि पहले वो पब्लिक थी अब वो प्राइवेट होना जा रही है, उसको कमीशन से अप्रूवल भी मिल जाती है, तो वो अब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस करेगी. सो जो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस हैं वो सब प्रोविजंस अब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर शामिल होंगी. यानी जो ये रिस्ट्रिक्शंस हमने बयान की ये भी शामिल होंगी. इसके अलावा भी जो नई चेंजेस हैं या जो प्राइवेट कंपनीज के हवाले से जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो सब प्रोविजंस अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कंपनीज जो हैं वो इंक्लूड करेंगी. सो अगर ये काम होगा, सो सबसे पहले कमीशन की अप्रूवल, आफ्टरवर्ड्स अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स टू कीप देम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्राइवेट कंपनीज, इंक्लूडिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट कंपनी. जो प्राइवेट कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस लॉ इम्पोज की हैं वो भी आर्टिकल्स में शामिल होंगी. उसके अलावा भी जो दीगर चेंजेस हैं, क्योंकि कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली द चेंजेस विच आर नेसेसरी शुड ऑल्सो बी मेड. अच्छा, अब अगर ये पब्लिक कंपनी जो है ये लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के बारे में आप जानते हैं कि सिक्योरिटीज सिक्योरिटी एक्सचेंज में, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, वहाँ पर ये कंपनी लिस्टेड होती है, क्योंकि इसकी शेयर्स की ट्रेड वहाँ पर हो रही होती है. तो अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है और उसको का स्टेटस जो है वो प्राइवेट में कन्वर्ट किया जाना है, तो उस सूरत में क्या होगा, कमीशन जो है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज को भी जो है वो राइट डाउन करेगा ये फैक्ट कि ये कंपनी जो अपना स्टेटस चेंज करना चाह रही है. और अगर वहाँ से कोई प्रोविजन आती है, वहाँ पर अगर वो कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन भी शो करते हैं या कोई अपनी वो भी रिक्वायरमेंट बयान करते हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी उनके साथ लिस्टेड थी, वहाँ पर उनके मामलात हो सकते हैं, जो भी अफेयर्स हैं उनको भी सेटल डाउन किया जाएगा. अच्छा, अब कंपनी ने क्या किया, अपना आर्टिकल्स को अमेंड किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को अमेंड किया, उसके अंदर जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी ली. अब अगर इस चेंज के बाद अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फुलफिल्ड हैं, तो कमीशन जो है वो देखेगा कि ये चेंजेस हैं जो कि कंपनी करना चाह रही है. इसी तरीके से हमने लिस्टेड कंपनी के हवाले से बात की, अगर लिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट करना है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी आपको नेसेसरी जो भी उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बताएंगी कि इनको फुलफिल करें. सो अगर कमीशन देखता है कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं, एवरीथिंग इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उस सूरत में कमीशन जो है वो अप्रूवल देगा, जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि ये अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है. तो ये अप्रूवल तब मिलेगी जब कमीशन सेटिस्फाइड हो दैट ऑल ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर प्रॉपरली फुलफिल्ड. जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी थी कंपनी पर वो इम्पोज की जा चुकी हैं, जो भी नेसेसरी चेंजेस थी मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में वो कंपनी कर रही है, तो उस सूरत में ये ऑर्डर जो है वो दिया जा सकता है, अप्रूवल जो है वो दी जा सकती है. जी हाँ, नहीं अभी टाइम है ना, टाइम है, इसको मैं पूरा करता हूँ. नहीं अभी तो 4 मिनट हैं, मैं इसको पूरा कर सकूंगा, इसको पूरा कर, हाँ इसको करते हैं फिर, वरना आगे नेक्स्ट शुरू कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कैरी ऑन करेंगे. अच्छा जी, अच्छा जब ये ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कमीशन की तरफ से, तो उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो कंपनी के पास भी चली जाएगी, उसकी कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के पास भी चली जाएगी. और जब ये ऑर्डर कमीशन की तरफ से यानी अप्रूवल का जो ऑर्डर है वो पास हो जाएगा, तो आफ्टरवर्ड्स कंपनी जो है अपने आर्टिकल्स को, अपने मेमोरेंडम को उसके हिसाब से अमेंड करेगी. जो भी अप्रूवल दी गई है, जिस हद तक चेंजेस अलाउ की गई हैं, उसके मुताबिक न्यू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वो प्रिपेयर किए जाएंगे. और उसके बाद जो भी तरीका हम इससे पहले जिक्र करते रहे हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अमेंडमेंट के बाद उनको जो है वो अपने रजिस्ट्रार को सेंड करना है ताकि वो अपने पास उनको एंटर कर ले. तो फिर वही यहाँ पर 15 दिन का टाइम दिया गया है उस ऑर्डर के बाद, विद इन 15 डेज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को जो है वो अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाएगा, एंड दिस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार उनको अपने पास एंटर करेगा, और जो है आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि अब ये जो न्यू मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं ये इस कंपनी के नए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बन जाएंगे. अब जब ये तमाम चेंजेस आ गई तो ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रार के पास भी सब एंटर हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी सब फुलफिल्ड हैं. तो नाउ आफ्टरवर्ड्स ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इस कन्वर्टेड कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं, एंड नाउ दिस इज अ प्राइवेट कंपनी. ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइवेट कंपनी खुद को पब्लिक बनाना चाह रही है, तो फिर उस सूरत में उनको क्या चेंजेस करना होंगी, उनको ऑब्वियसली उन प्रोविजंस को हटाना होगा जो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अगर प्राइवेट कंपनी खुद को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रही है तो ऑब्वियसली इसको इस अंदाज में चेंज करना अब ज़रूरी है। वो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द प्राइवेट कंपनीज, दीज शैल बी रिमूव्ड, और उनको रिमूव करने के बाद अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल से आर्टिकल्स को प्रिपेयर किया जाएगा। सो ये सिंपली यहाँ पर जो सबसे अहम बात हो रही है, यानी अगर पब्लिक कंपनी खुद को प्राइवेट कंपनी बना रही थी तो हमने कहा कि वो स्पेशल प्रोविजंस जो कि प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड हैं वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इंक्लूड करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर वाइस वर्सा काम हो रहा है तो फिर उन स्पेशल प्रोविजंस को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल से रिमूव किया जाएगा और अकॉर्डिंगली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। सो जब ये सब काम हो जाएगा, ये अल्ट्रेशन कर दी जाएगी, इस अल्ट्रेशन के बाद अब कंपनी का स्टेटस चेंज हो गया। पहले वो अगर प्राइवेट कंपनी थी तो अब वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, इट विल सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी। और फिर जी जी पूछें, हाँ जी
मैं कहता रहा, अगर मतलब एक लिमिटेड स्टॉक की तरह प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है,
जी जी
उसके लिए सर वो मतलब कमीशन से अप्रूवल मिल नहीं लेते हैं और सर पेशर
आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, पर मुझे यह समझ गया कि अगर प्राइवेट कंपनी जो है वो चेंज कर रही है अपना स्टेटस तो वहाँ पर भी इन... कौन सी, हाँ जी जी नहीं आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। लिस्टेड कंपनी के बारे में क्या आप पूछ रहे हैं? हाँ ये बेहतर है, ये बेहतर है, यहाँ पर आवाज़ क्लियर नहीं, आप लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछें वहाँ पर मैं आंसर कर देता हूँ, ये बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं बात अपनी कंक्लूड कर लूँ, टाइम मेरे ख्याल में इसका काम ही रह गया होगा। सो मैं ये हाँ जी प्राइवेट कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब वो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेती है, अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज कर देती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देती है, तो अब वो प्राइवेट कंपनी नहीं रही। अच्छा अब अपने न्यू जो उसके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम उसने प्रिपेयर किए हैं और जो स्पेशल रेजोल्यूशन उसने पास की थी वो सब रजिस्ट्रार को सेंड करेगी ताकि रजिस्ट्रार जो है उसको एंटर कर ले। सो वही काम है, सिर्फ उन चेंजेस को यहाँ से वो रिमूव करना है। अच्छा अब अगर कोई कंपनी जो है इनमें से किसी प्रोविजन को पूरा नहीं कर रही, कोई डिफॉल्ट कर रही है, तो लेवल टू ऑन द स्टैंडर्ड स्केल उसके मुताबिक उसको जो है वो पेनलाइज किया जाएगा। इसी तरीके से अच्छा यहाँ पर सेक्शन 47 सेम वही तमाम चीज़ें हैं, अगर प्राइवेट कंपनी खुद को सिंगल मेंबर कंपनी में कन्वर्ट करती है तो क्या होगा, यहाँ पर उसको कमीशन की अप्रूवल उसी तरीके से रिटर्न अप्रूवल चाहिए कि प्राइवेट कंपनी जो है वो खुद को कन्वर्ट कर रही है इनटू हाँ मतलब तकरीबन उसमें वही चीज़ें हैं, मेन जो चीज़ है वो कमीशन की प्रायर अप्रूवल है कि कंपनी जो है वो अपना स्टेटस चेंज करना चाह रही है, और फिर अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अमेंड करेगी। अमेंड कैसे करेगी, जो सिंगल मेंबर कंपनी से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस हैं वो भी इसमें ऐड कर लेगी। उसमें आपको कुछ प्रोविजंस याद भी होंगी, हमने SMC के बारे में कहा था कि वो उस अपना नॉमिनी जो है वो मेंशन करेगी एंड सो ऑन, जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करेगी। उन जब ये एप्लीकेशन देगी कंपनी जो है कमीशन को अप्लाई करेगी कि हम अपना स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर कमीशन जो है वो इंक्वायरी करेगा, तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड होंगी तो उसको रिटर्न अप्रूवल दे देगा, और वो कन्वर्जन का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को जो है वो अमेंड करेगी इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रोविजंस, और उसको एक सेकंड उसको अमेंड करने के बाद जो है वो रजिस्ट्रार को सेंड कर देगी। तो वो तरीका वही है, सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी जिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंपनी में आप खुद को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर इंक्लूड कर लेना, ये पॉइंट है मेन। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी खुद को सिंगल मेंबर कंपनी में कन्वर्ट कर रही है, तो अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर आप जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आप अपने आपको जब कमीशन की तरफ से रिटर्न अप्रूवल मिल गया, तो इन अकॉर्डेंस विद दैट अप्रूवल आप अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को जो है वो अमेंड करेंगे, उनके अंदर चेंजेस करेंगे और फिर उनको रजिस्ट्रार को आप सेंड कर देंगे। और रजिस्ट्रार के पास जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो गए, नाउ दीज आर योर न्यू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो आपके अंदर क्योंकि बेसिकली आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ही डिटरमिन करता है कि आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है। तो अगर आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये बता रहा है कि आपकी कंपनी जो है इट इज़ अ सिंगल मेंबर कंपनी बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंपनी, तो आपका कंपनी अब जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू अ सिंगल मेंबर कंपनी। ऑन द अदर हैंड अगर सिंगल मेंबर कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है किसी भी रीजन की वजह से, उसकी मेंबरशिप जो है वो बढ़ जाती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो उस सूरत में वो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करेगी। जो सिंगल मेंबर कंपनी से रिलेटेड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो सेट असाइड करेगी, और उसके बाद जो है अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अकॉर्डिंगली अल्टर करने के बाद रजिस्ट्रार को सेंड कर देगी। सो इन दिस वे दिस कंपनी विल चेंज फ्रॉम अ सिंगल मेंबर कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 40 जी, हाँ जी,
सर यहाँ पर आपने कहा कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो चेंज होना चाहती है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है सर, बोलो
जी,
सर आवाज आ
हाँ
रही है?
हाँ जी बोलें।
जी सर, अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो स्टेटस चेंज करना चाहती है प्राइवेट कंपनी में, अब हमें पता है कि पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है सर।
जी,
अब ये होता है कि सर इसको यानी एक तो रिक्वायरमेंट है परमिशन की कमीशन से, सिक्योरिटी कमीशन से, और दूसरी बात ये है कि ये जो रेजोल्यूशन है स्पेशल रेजोल्यूशन ये पेश करेगी अपनी जनरल मीटिंग सर, ये अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल से पहले होंगे या बाद?
देखिए होना क्या है, कंपनी के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास होगी, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने का मकसद ये है कि हम अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करना चाहते हैं इस अंदाज में ताकि हमारी कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो जाए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी जो है वो कमीशन से अप्रूवल लेगी कि हम खुद को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस अंदाज में, तो कमीशन जो है वो अप्रूवल उनको देगा कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, व्हाट्स एवर, इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो है वो अप्रूवल कंपनी को मिल जाएगी। जब कंपनी को कमीशन की तरफ से अप्रूवल मिल गई, तो अब कंपनी जो है वो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अमेंड करेगी और अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो है वो रजिस्ट्रार को सेंड करेगी। तो इस अंदाज
सर इसका मतलब ये है कि पहले ये रेजोल्यूशन पास करेगी, इसके बाद ये अल्टर होंगे।
हाँ जी, पहले रेजोल्यूशन पास करेगी, कमीशन से अप्रूवल लेगी, उसके बाद अपने आर्टिकल्स मेमोरेंडम, क्योंकि अमेंडमेंट तो तभी पॉसिबल है ना जब उसको अलाउ किया जाएगा। सिर्फ हम अपने एक कंपनी अपने तौर पर अगर कर लेती है, एक पब्लिक कंपनी खुद से ये कर लेती है कि हम प्राइवेट बन रहे हैं, लेकिन कमीशन की अप्रूवल इसके पास नहीं है, तो सिर्फ उनकी अल्ट्रेशन तो उनको नहीं अलाउ करेगी। सो पहले कमीशन की अप्रूवल चाहिए होगी, उसके बाद ही हो सकता है। अच्छा जी, सेक्शन 48 इसके अंदर क्या है कि एक अनलिमिटेड कंपनी वो लिमिटेड में कन्वर्ट हो या लिमिटेड अनलिमिटेड में हो, ऐसे भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाए या लिमिटेड अनलिमिटेड में हो जाए। सो सेम इज द वही तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, इसलिए मैं सबको ले रहा हूँ कि अनलिमिटेड कंपनी खुद को लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाह रही है, सो यहाँ पर भी वही बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास करेगी कि हम अनलिमिटेड से खुद को लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और फिर कमीशन की प्रायर अप्रूवल यानी इस चेंज से पहले, इस स्टेटस की कन्वर्जन से पहले अप्रूवल भी कमीशन की चाहिए, जिससे पहले चाहिए थी यहाँ पर भी चाहिए। सो तो कमीशन अप्रूवल देगा। अब यहाँ पर क्या जरूरी है कि जब अनलिमिटेड से आप खुद को लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो लिमिटेड कंपनी की स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो सब की सब रिक्वायरमेंट्स, वो सब की सब स्पेशल प्रोविजंस आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर शामिल हो। यानी मेमोरेंडम में आप मेंशन करेंगे कि हमारे कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। वो कैसे लिमिटेड होगी? इट विल बी लिमिटेड बाई शेयर्स और व्हाट्स एवर, वो आप सब मेमोरेंडम के अंदर मेंशन कर देंगे। अनलिमिटेड कंपनी में नहीं था, लेकिन लिमिटेड कंपनी क्योंकि बन रही है तो अब वो सब चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरीके से आर्टिकल्स में बहुत सी चेंजेस आएंगी, तो वो सब चेंजेस जो हैं वो लाई जाएंगी। अब जब कमीशन जो है वो अप्रूवल दे देगा आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी इंक्वायरीज, रिटर्न ऑर्डर दे देगा, और इन अकॉर्डेंस विद दैट ऑर्डर कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को जो है वो कन्वर्ट कर लेगी, अमेंड कर लेगी। उस अमेंडमेंट के बाद, उस अल्टरेशन के बाद, ये अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इनको रजिस्टर करवाया जाएगा, और बाय वर्चू ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन कंपनी का स्टेटस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड। इसी तरीके से कंपनी अगर खुद को लिमिटेड से अनलिमिटेड में कन्वर्ट करना चाह रही है, तो वही काम होगा अपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अंदर से जो लिमिटेड कंपनी की स्पेशलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करेगी, और इस फैक्ट को मेंशन करेगी कि हमारे कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो इसके बाद अनलिमिटेड होगी। तो अगर ये अल्टरेशन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कंपनी कर लेती है, तो इस तरीके से भी उसका स्टेटस जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। लास्टली सेक्शन 49 जो है वो क्या कह रहे हैं, कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय ग्रंटी से लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट कर दें आप, या लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय ग्रंटी में कन्वर्ट करना चाहें, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, वही तमाम चीजें सेम। आप लिमिटेड बाय ग्रंटी से लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वही कमीशन के अप्रूवल आपको चाहिए। पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें अपनी कंपनी के अंदर, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फिर आप कमीशन से अप्रूवल लें कि हम ये चेंजेस अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लाना चाह रहे हैं, ताकि हमारी जो कंपनी है वो लिमिट बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो जाए। जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी की स्पेशल प्रोविजंस हैं वो सब आप शामिल कर लेंगे या अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, जब आपको अपने आपको कमीशन की तरफ से रिटर्न अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अमेंड किया जाएगा, और वो अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वो रजिस्ट्रार के पास उनको एंटर किया जाएगा। उसके लिए वही 15 डेज का टाइम है। और इस अल्टरेशन के बाद कंपनी का जो स्टेटस है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी सॉरी लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, जो लिमिटेड बाय गारंटी की स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे, और उस सूरत में क्या होगा कि कंपनी जो है वो उस अल्ट्रेशन के बाद उसका स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा, और आफ्टरवर्ड्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंपनी विद न्यू फॉर्म और न्यू क्लास। ये सब चीजें हमने देखी। अच्छा, अब इस सब में तो कोई बजायर कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं थी, यानी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। अब किसी भी अंदाज से एक कंपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो अब इस कन्वर्जन का असर क्या आएगा, इफेक्ट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तो प्रोसीजरल चीजें थी जो हमने देखी। अगर कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इस कन्वर्जन का क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले तो हमने कहा कि जब भी रजिस्ट्रार के पास ये आपकी एप्लीकेशन जाएगी, आपके अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल जाएंगे, तो कंपनी के ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो अमेंडेड हैं, अल्टर्ड हैं, इनको रजिस्टर करने के बाद रजिस्ट्रार उस कंपनी को सर्टिफिकेट देगा, जिसको आप सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन कह सकते हैं। इस सर्टिफिकेट का इफेक्ट क्या है कि नाउ दिस कंपनी हैज बीन चेंज्ड, इस कंपनी का स्टेटस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि इस सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन के बाद भी चेंज नहीं होंगी, उन चीजों पर इफेक्ट नहीं आएगा। व्हाट आर दीज थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेट्स एंड द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी विल कंटिन्यू एज बिफोर। कंपनी के जो इससे पहले डेट्स लिए हैं, जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से कंपनी पर लाइबिलिटीज इम्पोज हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी कन्वर्ट होगी तो वो डेट्स ख़त्म हो जाएंगे या वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी या उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, वो सब उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी एज देर हैज़ बीन नो कन्वर्जन। मसलन एक कंपनी पहले अनलिमिटेड थी, अब वो लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो मेम्बर्स हैं अब जो प्रीवियस डेट्स हैं उनके लिए भी वो डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। So, जो प्रीवियस डेट्स थे दे विल कंटिन्यू एज द कंपनी हैज नॉट बीन कन्वर्टेड। सो जो कंपनी के ऑलरेडी डेट्स थे, जो प्रीवियस डेट्स थे या प्रीवियस लाइबिलिटीज थी, दे विल कंटिन्यू एंड दे विल स्टैंड एज बिफोर। अच्छा, ये पहली बात। सेकेंडली, एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बाय द कंपनी और अगेंस्ट द कंपनी विल कंटिन्यू एज दे हैव कंटिन्यूइंग बिफोर दिस कन्वर्जन। यानी कंपनी ने कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी तो वो कंटिन्यू रहेंगी, इसी तरीके से कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी तो वो भी उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी जैसा कि कन्वर्जन से पहले था। यानी कन्वर्जन लीगल प्रोसीडिंग्स को भी इफेक्ट नहीं करेगी। In the same way, the rights and obligations of the company, they will also remain the same as regarding the transactions before the conversion. वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कही। So ये वो चंद एक चीजें हैं जो कि even after conversion, they will remain the same. तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बेसिक मेनली दो चीज़ें डिस्कस की। एक हमने बात की सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो कैसे होगा, कब मिलेगा, सेक्शन 19 एंड 20 के तहत। और दूसरा हमने बात की कन्वर्जन ऑफ कंपनीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 50 तक। सो दीज वर टू थिंग्स जो कि आज हमने देखी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।